لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم أجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ایک ایکسپلینیشن یا وضاحت یہ کر دی جائے کہ ایام عزا کے 1434 ہجرہ کی ان مجالس میں میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ میرے پاس ٹائم کی شارٹیج ہے، تو بہت ساری باتیں میں ایک سیکوینس کے ساتھ ابھی آپ کے سامنے نہیں لا رہا ہوں. مثلا آرمی آف امام زمانہ میں 25 اہم کنڈیشن ہونا چاہیے، اس میں سے جو لاسٹ 5 یا 6 ڈیز میں ہماری مجالس ہوئی ہیں آلموسٹ 10 یا 12 کنڈیشن ہم بتا چکے ہیں، لیکن الگ سے اس کو ابھی مینشن نہیں کیا جو مختلف سبجیکٹس اور ٹاپکس ان مجالس کے آ رہے ہیں. تو جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 11th آف محرم یعنی زیارت کی مجلس میں ان تمام چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر کے بہت ہی شارٹ میں وہ خطبہ پڑھوں گا جس کے اندر یہ 25 کنڈیشنز کمپلیٹلی جمع ہو جائیں گی. یہ مجالس میں الگ 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 اسکیٹرڈ طریقے سے یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ذرا سا مجھے ٹائم کا پرابلم ہو رہا، اس کی وجہ سے میں ہر پوائنٹ کے وقت یہ مینشن نہیں کر رہا ہوں. یہ امام کی آرمی والے کی 6 کنڈیشن، دیکھیے یہ 8 کنڈیشن، لیکن لاسٹ مجلس میں ان سب کو کنیکٹ کیا جائے گا. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری آج کی مجلس اس عشرے کے ہاف وے کی مجلس ہے، بالکل آج ہم درمیان میں ہیں، 5 مجلسیں ہو چکی ہیں اور آج کے بعد پھر 5 مجلسیں اور ہوں گی، ادھر 5 ادھر 5، درمیان میں آج کی یہ رات آ گئی. اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات سے ہمارے یہاں عزاداری کا ایک بہت ہی اہم حصہ یا پارٹ آتا ہے مختلف شبی. کل رات کو بھی جناب اونو محمد کی شبی آپ کے سامنے آئی تھی، لیکن اب جناب قاسم، جناب عباس، جناب علی اکبر. تو یہاں رک کر دو چیزوں کو اس لیے ایکسپلین کرنا ضروری کہ عزاداری پہ جو اٹیک آج کل ہو رہے ہیں، تو ابھی ڈائریکٹ مجلسوں پر یا لیکچرز پر اٹیک نہیں ہو رہا، دشمن کا ایجنڈا وہی، آخر میں ہم کو وہی پہ پہنچایا جائے گا کہ جہاں یہ کہا جائے گا امنگ اور سیلز، ہم دوسروں کی یا غیروں کی یا ادر اسکول آف تھاٹ کی بات نہیں کرتے. ہمارے درمیان 12 امام کے ماننے والے، 14 معصوم کے ماننے والے، کربلا کے عزادار، اینڈ یہ ہونے والا ہے، یہ اس کا ایجنڈا. اللہ ہے وہ مکرو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، لیکن اس کا جو ایجنڈا ہے آخر میں یہ کہا جائے گا کہ مجلس اور لیکچر بھی حرام اور شرک اور بدعت. لیکن ابھی ڈائریکٹ مجلس پر اٹیک کرنا مشکل. تو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ واٹ از دا لاجک بیہائنڈ شبی، اور وائے اب لوگ اتنی دیر تک ماتم کیوں کرتے ہیں؟ از انٹ اٹ بیٹر कि मातम हम 5 मिनट करें और लेक्चर जो है वो हम 10 मिनट ओरेटर को ज्यादा टाइम दे दें। मजलिस पढ़ने वाले आलिम से किसी को भी कोई हमदर्दी और मोहब्बत नहीं है। ये मातम को कम करके मातम खत्म, और उससे पहले अटैक शमी पर। और एक बात मैं ये बता दूं कि अभी अभी मेरी स्पीच से पहले जो हमारे इस वक्त के बर्मिंघम जमात के प्रेसिडेंट मोहतरम नौशाद महल अली साहब ने एक मैसेज आपको दिया वर्ल्ड फेडरेशन और काउंसिल ऑफ यूरोपियन जमात का, जो मैंने पहली दूसरी मजलिस में भी एक जुमला कहा था कि बहरहाल ये मत समझिएगा कभी कि इस्लाम सिर्फ सोशल वर्क का नाम है, रिलीजन पहले है, सोशल वर्क बाद में आता। और ये जो एजुकेशन के हवाले से बात कही गई तो आपको भी ये मालूम है और मुझे भी कि रिलीजियस एजुकेशन का ये प्रोजेक्ट नहीं, ये दुनियावी तालीम का, लेकिन बहुत अहम। और एक बहुत ही शॉर्ट में एक रिप्लाई या मैं जवाब देता हूं, जब कोई ये कहता है कि इमाम जमाना कब जाहिर होंगे, मौलाना उसकी कोई बहुत ही अहम साइन बताइए। अब इस सवाल के डिफरेंट रिप्लाई आपके सामने आते हैं और सब सही है। कोई ये कहता है कि जब सुफियानी आ जाएगा, सुफियानी मीन्स अब इमाम आने वाले, बल्कि पुराने जमाने में या पहले हमारे उलमा तो ये कहते थे कि इमाम के आने से 270 डेज पहले हम बता सकेंगे कि अब इमाम आने वाले। वो जो मेरी एक मजलिस थी कि जुहूर की डेट को कोई फिक्स नहीं कर सकता, लेकिन हमारे उलमा ये कहते थे कि हाँ हम ये बता सकते हैं कि विद इन 9 मंथ अब इमाम आने वाले, क्योंकि हदीस यही है कि सुफियानी को सिर्फ 9 महीने हुकूमत का चांस या मौका मिलेगा। तो मसलन एक जवाब यह है कि जब सुफियानी आ जाएगा इमाम कब आएंगे, एक जवाब यह है कि जब मोमिनीन का कत्ल और उनका ब्लडशेड बहुत ज्यादा होगा, एक जवाब यह है कि जब मदीने पे अटैक होगा। बहुत सारे डिफरेंट इसके जवाब हो सकते हैं, वो सारे जवाब अपनी जगह सही भी है, लेकिन एक बहुत ही शॉर्ट रिप्लाई मेरा भी होता कि जब ये सवाल किया जाता और इस पर मेरी हर साल एक मजलिस होती, ये आज मेरी तकरीर से पहले की जो स्पीच थी उसकी वजह से ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, तो एक रिप्लाई ये होता है कि इमाम उस वक्त आएंगे कि जब हमारी कौम में प्रोफेशनल्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आलिम नहीं, मुज्तहिदीन नहीं, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कंप्यूटर के माहिरीन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और इस टाइप के लोग, और ओवरऑल शिया कौम का लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। ज़ुहूर इमाम की निशानी नहीं है, ये ज़ुहूर इमाम की प्रिपरेशन। और ये जुमला जो मैं कहता हूं आखिर, मेरा पर्सनल व्यू है कि हदीसों में इसका तस्किरा, तो यकीनन ये हदीसों की बात, आपने कल की मेरी मजलिस में भी ये जुमला सुना होगा कि मैं इंतहाई अगेंस्ट हूं जब कोई आदमी ये कहकर अपना मैसेज शुरू करे कि इन माय पर्सनल ओपिनियन, दीन के मसाले में पर्सनल ओपिनियन नहीं चलता। चुनाचे मैं इसको अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं कह रहा हूं, ये ज़ुहूर इमाम की एक निशानी, कौम का ओवरऑल लिटरेसी रेट बढ़ना, प्लस हमारी कौम में प्रोफेशनल्स की तादाद बहुत ज्यादा। लेकिन ज़ुहूर इमाम की जो साइंस अभी आ रही, पहले ये कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं आखिर में इस पे जाऊंगा, मे भी शबे आशूर, मे भी जियारत की मजलिस, लेकिन ज़ुहूर इमाम का सब्जेक्ट अपनी जगह पर, ये इस बात का ख्याल कीजिएगा कि लिटरेसी रेट हो या जैसा अभी मैंने कहा कि प्रोफेशनल एजुकेशन हो या ऑर्फेनेज हो या इवन हौजा इल्मिया हो, हसैन मियां तो मेरी फील्ड है ना, वो भी क्यों ना हो, आजादारी को सैक्रिफाइस करके नहीं। बार बार ये बात आती, देखिए स्टार्ट यहां से होता, दुश्मन उसका हिडन एजेंडा तो यही है कि आखिर में जाके आजादारी कंप्लीट खत्म होकर रह जाए, इंक्लूडेड मजालिस स्पीचेस। लेकिन हर साल ये बात आती, बजटिंग करना चाहिए, इतना सारा खर्चा जो आजादारी पर है ये वेस्ट हो रहा। बास जगहों पे तो इसका रिजल्ट ये निकला है कि मजालिस के बाद तबर्रुक और न्यास कट कर दिया गया। आका हुसैन का कोई नुकसान नहीं है नऊज़ु बिल्ला, ये हम खुद अपना लॉस कर रहे हैं। आप अपने पुराने बुजुर्गों को देख लें, जो आजादारी पे खर्च करते थे तो उसके कितनी बरकतें उनको मिली। आप में से अक्सर जो यहां पे बैठे हैं, आपको नहीं मालूम कि अल्लाह ने ये चांस बनाया कैसे। ये चांस बनाया आपके बुजुर्गों की उस नेकी के नतीजे में, और हम जो इस वक्त गलती कर रहे हैं तो एंड में जाकर हमें या हमारी औलाद को उस वक्त इसका नुकसान सामने आएगा जब हमारे पास कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होगा, वापस नहीं जा सकेंगे। बरकत एक ऐसी चीज है कि जिसे लॉजिक से नहीं समझाया जाता, वो आदमी अपनी आंख से देखता। आजादारी, और बहुत ही शॉर्ट में इसमें वही एक जुमला कहता हूं कि इमाम मासूम ने सवाल किया कि ऐ शख्स, ये फुरू है काफी वॉल्यूम 2 चैप्टर हज उसकी रिवायत, कि तू इस साल हज पर क्यों नहीं गया। कहा मौला मैं अपना वाजिब हज कर चुका हूं और जो पैसा मेरे पास था वो सारा मैंने चैरिटी में दे दिया। चैरिटी, इमाम ने कहा कि चैरिटी बहुत अच्छी चीज, मगर हज की बरकतें और हज के बेनिफिट उससे ज्यादा। रावी कहता है कि मौला अब मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि हर साल हज में जाऊं। इमाम ने कहा अपने घर के बजट को कम कर। ये जुमला आप जाके फुरुए काफी में देखी, क्योंकि इसका इंग्लिश और उर्दू ट्रांसलेशन भी हो चुका। और ये एक बात हमारे यहां बहुत फेमस कि हमारे मजहब की सबसे ऑथेंटिक किताब यही काफी। हमारे यहां हदीस की कोई ऐसी किताब नहीं है जिसकी 100% हदीसें सही, लेकिन जितनी भी हदीस की किताबें हमारे पास हैं उसमें सबसे ऑथेंटिक यही काफी उसकी हदीस। इमाम ने फरमाया अपने घर के बजट को कम करो, अपने बच्चों और बीवी को सिंपल फूड प्रोवाइड करो, और जो पैसा उससे बच जाए उस पैसे को हज पे खर्च करो। आजादारी, मुझे मालूम है और मैं तो 4 साल से ये बात अर्ज कर रहा हूं कि रिसेशन और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम और ये सारे प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आजादारी के ऊपर इंसान जो पैसा खर्च करता चला आ रहा है उसमें कमी करे। और इमाम खुमैनी का 1981 का फर्स्ट मुहर्रम का खुतबा, वली फकीह और रहबर मुस्लिमी हर साल पहली मुहर्रम को खुतबा एक मैसेज देते हैं। इस साल भी हजरत आयतुल्लाह खामेनाई का खुतबा है, पढ़िएगा उसे, इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। 1981 इराक ने ईरान पे अटैक किया, और बड़ा सरप्राइज अटैक, और ईरान के हालात ये थे कि अभी अभी रेवोल्यूशन आया, वाकई वो एक रेवोल्यूशन था। सारे इंस्टीट्यूशन टूट फूट चुके थे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो पर था, उसको नए सिरे से बिल्ड करना था, जिसे अंग्रेजी में शायद कहते हैं फ्रॉम स्क्रैच। और उस वक्त जो अचानक अटैक हुआ, और ईरान के ये बड़े अहम शहर थे, खुर्रम शहर, आबादान, आहवाल, पूरे पूरे शहर तबाह हुए, और ये सारे होमलेस तेहरान की सड़कों पर आए और अय्याम अज़ा गए। पहला मुहर्रम इराक के अटैक के बाद पहला मुहर्रम, चुनाचे वहां भी एक आवाज ये बुलंद हुई और एक कंपेन ये शुरू हुई कि इस साल अगर हम आजादारी को कट डाउन करके 50% या 70% बजट बचा ले और इन लोगों पे खर्च करें, नेक्स्ट ईयर फिर वही नॉर्मल बात। अच्छा, यहां पे एक बात मैं रोक के ये कह दूं कि याद रखिएगा कि जैसे जैसे जुहूर का जमाना करीब आएगा, वैसे वैसे हर एक महीने के बाद दुनिया में कहीं ना कहीं मोमिनीन के ऊपर प्रॉब्लम आते रहेंगे। अगर ये सोचे कि इस साल बजट को कम किया जाए, नेक्स्ट ईयर हम नॉर्मल हो जाएंगे, नॉर्मल कभी नहीं होंगे, नेक्स्ट ईयर कहीं और कोई प्रॉब्लम होगा, उसके नेक्स्ट ईयर कहीं और कोई प्रॉब्लम होगा, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि एक बार जो बजट कम हो जाता है ना, तो उसके बाद दोबारा आदमी खास तौर पर आजादारी चीजों जैसी चीजों में नहीं जाता। ये हदीस आपने सुनी हो, गर्चे ये मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो अब मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। खाने काबा, ये कहा जाता है, मैं इस वक्त कोई रिसर्च वाली बात नहीं कह रहा हूं, ये एक फेमस बात कि रोजा रसूल उसमें भी पैगंबर का जो हुजरा था उसका एक पार्ट जरी से बाहर निकल गया। मुझे छोटा सा एक प्लेटफार्म है जरी के बाहर, कहा कि ये एक्चुअल जरी का पार्ट था, कंस्ट्रक्शन के वक्त ये बाहर निकल गया। और फिर उलमा कहते हैं कि शायद इसमें एक बेनिफिट अल्लाह ने ये दिया कि हम और आप तो रसूल की जरी के अंदर एंटर नहीं हो सकते, इसके लिए जरूरी है कि हम डिक्टेटर हों, इसके लिए जरूरी है कि हमने मुसलमानों का खून बहाया हो, इसके लिए जरूरी है कि हम सद्दाम और कद्दाफी और मसलन पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ की तरह के जालिम, मोमिन मुत्तकी परहेजगार को तो वहां कोई जाने ही नहीं देगा। तो अल्लाह ने जरी का एक पार्ट बाहर कर दिया ताकि आम मुसलमान और मोमिन रसूल के हुजरे और जरी के अंदर जाके गोया इबादत करे। मैं अपनी बात को वाजे नहीं कर रहा हूं टाइम की वजह से। और इसी तरह से खाने काबा का भी एक हिस्सा बाहर है, वो जो एक सेमी सर्कुलर वॉल है यू शेप गोल्डन ड्रेनेज पाइप के सामने हिजरे इस्माइल, जिसके बारे में कहा जाता है कि औलाद के लिए जिसको दुआ करना, अगर दुआ कहीं पूरी ना हो उस जगह पे यकीनन दुआ पूरी होती। बहुत लंबी बात, उसी में हजरत हाजरा की कब्र और उसी में हजरत इस्माइल की कब्र। और हज करने वालों को पता कि जब आप खाने काबा का तवाफ करते तो नॉट ओनली खाने काबा, आपको ये सेमी सर्कुलर वॉल का भी तवाफ करना है, वरना आपका हज गलत हो जाएगा। और जिसमें जनाब हाजरा की कब्र, जनाब हाजरा की कब्र का भी तवाफ कराया जाता, मगर फेमस यह है कि यह असल में काबे का पार्ट था। जब कुरैश ने काबा बनाया तो बजट कम रह गया, जितने पैसे थे जितना काबा बन सका बना दिया जो आज, और इतना हिस्सा उनके पास पैसे नहीं थे इसको काबे में ज्वाइन करने का, इसको उन्होंने ये सोच के छोड़ दिया कि बाद में फंड आएंगे तो कंप्लीट करेंगे, फिर कभी कंप्लीट नहीं हुआ। जुमला है रिवायत का कि जब जमाने के इमाम आएंगे तो इस हिस्से को काबे से जोड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे, लेकिन बात बहुत फैलती जा रही। तो आजादारी में इस साल कमी कर दो, क्योंकि मसलन पाकिस्तान के अंदर साहिबान ईमान की शहादतें बहुत हो गई हैं, वहां पे कितने ही यतीम बच्चे और बेवा औरतें, उनकी मदद करो, अगले साल हम नॉर्मल हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये कि जुहूर इमाम तक नॉर्मल कभी नहीं होंगे, कभी एक इलाके का प्रॉब्लम, कभी दूसरे इलाके का प्रॉब्लम। ये बात मुझे 11 मुहर्रम जियारत के मजलिस तक कंप्लीट करना, इससे पहले जब मैं मजलिसे पढ़ता था कभी कोई बात इनकम्प्लीट रह जाती थी तो मैं सेटिस्फाई होता था कि अभी नहीं तो बाद में आ जाऊंगा, 2 साल 3 साल बाद और इसे कंप्लीट करूंगा। मगर ये इस दफा अपनी बीमारी, अपनी सेहत, अपनी एज को देखते हुए मुझे लग रहा कि बर्मिंघम की जमात को मैं इस मेंबर से आखिरी सर्विस दे रहा हूं, इसके बाद मुझे दोबारा कभी कोई चांस नहीं मिलेगा। तो खैर इमाम की बारगाह में इंशाल्लाह बैठा हूंगा, बात ये कह रहा हूं कि इसे मैं कंप्लीट करूंगा आगे जाकर, आज नहीं। लेकिन आज इतनी सी बात कि एक तो ये कहना कि आजादारी में अभी खर्चा कम करो बाद में पूरा करें, ये कभी ऐसा नहीं हो। एक मरतबा जो खर्चा कम तो कम, और फिर इमाम खुमैनी का वो जुमला याद कीजिए कि जब ये कहा गया और वाकान उस वक्त जीनियन प्रॉब्लम था, इराक ने अचानक अटैक किया सद्दाम मलून, पूरे पूरे शहर, 3 बड़े सिटीज, बाकी सब लोग होमलेस बन के तेहरान की सड़कों पर पड़े हुए, जैसे सीरिया के हालात की वजह से कसीर तादाद में वहां के हौज़ इल्मिया के स्टूडेंट नजफ में आए। तो आप नजफ में जाएंगे तो आपको अपने लास्ट ट्रिप और इस ट्रिप के दरमियान बिल्कुल आप देख लेंगे कि वाकई एक फर्क नजर आएगा। तो खैर कहा कि इनकी मदद क्यों ना करें, और फिर तेहरान का विंटर امام خمینی نے کہا قطعاً نہیں. عزاداری امام کے نام پہ جو خرچ ہوتا ہے ایک تومان بھی اس کے اندر کم نہ کرو. اگر تمہیں ان سے اتنی ہی ہمدردی اور محبت ہے تو اپنے گھر کا خرچہ ادا کرو. جو گھر کے اندر لباس بناتے ہو, جو گھر کے اندر ضرورت کی چیزیں لے کے آتے ہو اس کو ادا کر دو. دو وقت کھانا کھاتے ہو, ایک وقت کھانا کھاؤ اور ان کی مدد کرو. مدد کرنا ہے اپنے خرچے میں کمی کر کے نہیں, امام حسین کے نام پہ کمی کر کے. یہ حضرت امام خمینی کا 81 کا خطبہ. تو خیر میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے یہ ڈیڑھ ساتھی ہیں جناب قاسم کی شبی, دنیا کے کچھ علاقوں میں مہندی نکلتی, کچھ علاقوں میں شبی نکلتی, پھر جناب عباس, پھر جناب علی اکبر. تو ایک بات تو عزاداری کے حوالے سے اس کے اندر خاص طور پر پیسہ خرچ کرنے کے حوالے سے کوئی کمی نہیں. آپ اس کی برکتیں اور اس کے بینیفٹ دیکھیں گے. اس کے بعد دوسری چیز, ہمارے پاس آقا حسین پروٹیکٹر آف رسالہ. کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کربلا کے جہاد میں آقا حسین کا سب سے بڑا مشن رسالت کو بچانا تھا. یزید کا اٹیک رسالت پر تھا, معاویہ کا اٹیک رسالت پر تھا, وہ پروٹیکٹر آف رسالہ. جیسے شہزادی فاطمہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ پروٹیکٹر آف ولایہ, ولایت علی کے پروٹیکٹر ہیں, اسی طرح سے آقا حسین میدان کربلا رسالت کو بچانے کے لیے گئے. عظمت رسالت آقا حسین کے حوالے سے بالکل, یعنی ابھی آقا کی برتھ ہوئی, بالکل بگننگ کا واقعہ, ابھی دنیا میں آئے ہیں آقا حسین. ایک روایت ہمارے یہاں بہت پڑھی جاتی ہے, مجلس میں بھی, مرثیے میں بھی, قصیدے میں, اور وہ یہ ہے کہ آقا حسین جب دنیا میں آئے تو ایک فرشتہ گناہگار فرشتہ فطرس. اچھا اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ فرشتے کو ہم گناہگار کہہ سکتے ہیں کہ نہیں. یہاں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو انبیاء تک کو کہتے ہیں کہ وہ گناہگار ہیں, نعوذ باللہ. حضرت آدم نے ترک اولا کیا تھا, گناہ نہیں کیا تھا. فرشتے نے ترک اولا کیا تھا, گناہ نہیں کیا تھا. ٹائم بھی نہیں ہے میرے پاس, اور ایسا لفظ میری زبان پہ آتا ہے کہ میں ڈر جاتا ہوں کہ کہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ پھیل جائے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک فرشتہ, بہرحال جس سے ایک ایسی مسٹیک ہوئی تھی جو اگینسٹ عصمت تو نہیں, لیکن بہرحال اللہ نے اس کو پنش کیا. یہ روایت پڑھی جاتی, مگر نہیں, دو روایتیں, ایک نہیں ہے, دو ہیں, دو الگ الگ فرشتے ہیں. ایک فرشتہ نہیں آیا تھا آقا حسین کے پاس, دو فرشتے آئے تھے. اور آئے کیا تھے؟ جبرائیل اٹھا کے لائے تھے, اللہ نے ان کے ونگز یا ان کے پر چھین لیے تھے. نہ یہ فرشتہ اڑ سکتا ہے نہ وہ. جب جبرائیل آسمان سے اتر رسول خدا کو مبارکباد دینے جا رہے ہیں تو راستے میں پہلے فرشتہ نمبر 1 سے ملاقات, فطرس, کہا کہ مجھے بھی لے چلو. پھر فرشتہ نمبر 2 اس نے دیکھا, کہا مجھے بھی لے چلو. اب یہ ساری ڈیٹیل تو آپ 3rd of شعبان کو خوشحالی کے جشن میں سنتے ہیں, لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں دو الگ الگ اسٹوریز ہیں, فطرس اور سل سائل. دوسرے فرشتے کا نام تھا سل سائل, دونوں کے الگ الگ واقعے. میں کیوں خالی ایک ریفرنس دے رہا ہوں اس لیے کہ بات اگر ڈیٹیل میں چلا گیا تو آج کے مجلس کا سبجیکٹ رہ جائے گا. دو فرشتے دونوں ہی آقا حسین کے پاس آئے. جبرائیل نے ایک فرشتے کو آقا حسین کی باڈی سے ٹچ کیا. آقا حسین ابھی دنیا میں آئے ہیں, کیا انگریزی میں شاید کریڈل کہتے ہیں, گہوارہ, اس کے اندر ایک فرشتے کو لا کے آقا حسین کی باڈی سے ٹچ کیا, دوبارہ اس کے پر پیدا ہو گئے, وہ ہوا میں اڑتا ہوا جانے لگا. اور دوسرے فرشتے کو وہی جو کریڈل یا گہوارہ ہے اس کی لکڑی سے ٹچ کیا اور مس کیا, اور اس کے بھی پر دوبارہ پیدا ہو گئے, اور وہ بھی اڑتا ہوا آسمان کی جانب چلا. دو سیپریٹ یا ڈیفرنٹ واقعات, مگر اتنی سملیرٹی ہے دونوں کے اندر کہ علماء عام طور پر خالی ایک واقعہ پڑھتے ہیں. دو الگ, میں بار بار اس الگ 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 سیپریٹ ڈیفرنٹ اس پہ زور کیوں دے رہا ہوں؟ اب سنی, پورا سملر واقعہ دونوں کا, صرف ایک ٹیکنیکل فرق ہے. ایک فرشتہ فطرس آقا حسین کی باڈی سے مس ہوا, دوسرا فرشتہ سلسائل اس لکڑی کے بنے ہوئے کریڈل یا گہوارے سے مس ہوا. जिसमें आका हुसैन आराम कर रहे हैं, इसे भी पर मिले, उसे भी पर मिले, इसकी भी गलती माफ हुई, उसकी भी गलती माफ हुई, इसे भी वही बेनिफिट मिला जो बेनिफिट उसको मिला। दो अलग अलग चीज। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि देखिए, अगर खाली गहवारे वाला वाकया होता, यानी वो क्रेडिट वो लकड़ी से मस होता, तो आजकल तो बच्चे बड़े साइंटिफिक हो गए हैं ना। कोई कहता कि नहीं, आका हुसैन का मौजजा नहीं है, वो लकड़ी जो थी ना वो फुला जंगल एमेजोन की थी और वहां पे एक स्पेशल दरख्त होता है और उस दरख्त की लकड़ी की ये खासियत है कि अगर आदमी की स्किन उससे टच हो जाए तो पर निकल आते हैं। हर चीज में तो आजकल गूगल सर्च इंजन और नई नई बातें लोग ढूंढ के ले आते हैं। वो लकड़ी के मौजूदे आ जाते हैं कि लकड़ी की वजह से हुआ। चुनाचे एक फरिश्ते ने आका हुसैन की बॉडी को टच किया, और अगर दोनों फरिश्ते आका हुसैन की बॉडी को टच करते तो जो आज के हमारे यूथ और यंगस्टर हैं, सम ऑफ देम, उनको एक दलील मिल जाती कि सारा मौजूदा हुसैन है, आलम का कोई मौजूदा नहीं है, ताबूत का कोई मौजूदा नहीं है, शबी का कोई मौजूदा नहीं है। दो वाकयात पेश आए, एक आका हुसैन की बॉडी का, एक आका हुसैन की उस लकड़ी का जिसमें आका हुसैन है, ताकि पता चले हुसैन की अजमत को पहचानो। हुसैन का जिस्म भी मौजूदा दिखाता है और वो शबी भी मौजूदा दिखाती है जो हुसैन से मंसूब हो जाए। हुसैन का जिस्म वो भी मौजूदा दिखाता है, आया तथीर है, ये रिसालत के जुज है, और वो लकड़ी भी जो हुसैन के करीब पहुंच जाए, जिसकी निस्बत हुसैन से हो जाए, चाहे वो करबला में आका की जरी हो और चाहे हमारे अज़ा खाने में अब्बास का अलम हो। आज भी सारे मौजूदा दिखाते हैं, क्योंकि इसकी निस्बत आका हुसैन से हो गई। तो अल्लाह ने हुसैन की विलादत के वक्त ही दो सेपरेट वाकयात और दो सेपरेट मेडिकल हमारे सामने पेश किए, और बेनिफिट दोनों का बिल्कुल एक था। यानी जितनी अजमत आका के जिस्म से अपने आप को टच करने की है, वही अजमत आका की जरी से अपने आप को टच करने की है, वही अजमत आका की छवि से अपने आप को टच करने की है, वही अजमत जनाब कासिम की छवि और जनाब अब्बास की छवि से है। ये उन लोगों को रिप्लाई है कि जो ये कहते हैं कि भाई सारा मौजजा हुसैन का है, आज हुसैन नहीं है, हमारी आंखों के सामने नहीं है। अब आप इस वक्त दुनिया भर के चैनल्स पर देख रहे हैं कि किस तरह से काफिलों पे काफिले करबला जा रहे, खाली जरी का तवाफ कर रहे, इस जरी से उनको वही फायदा मिल रहा जो जमीन के नीचे दफन। ये आपको मालूम है ना कि आका की असल और एक्चुअल कब्र जरी के पीछे नहीं है बल्कि जमीन के नीचे है। तो ये हुसैन, हुसैन आजादारी, हुसैन के नाम पे खर्चा है, शबी हुसैन के नाम पे मौजूदा है, इन तमाम चीजों में कमी ना आने दें। आज की मजलिस दुनिया भर में जहां भी हो रही, आज से शबी निकलना शुरू होती है। शाम गरीबा तक सिलसिला जारी होता है और बाद इमाम बारगाहों में जियारत की मजलिस में भी शबी निकाली जाती है। मगर हुसैन, हुसैन जो जिहाद कर रहे हैं, वो जिहाद अभी इनकम्प्लीट है। हुसैन के जिहाद को आके कंप्लीट करेगा जमाने का इमाम। और यहां रुक के एक बात ये अर्ज कर दूं कि कल एक बात इनकम्प्लीट रह गई थी, वो तो हर मजलिस के आखिर में बात इनकम्प्लीट रहती है, नेक्स्ट मजलिस पे नेक्स्ट मजलिस, और वो ये कि दुनिया की सबसे बड़ी दुआ, यही बात कल हो रही थी, सबसे स्ट्रांग दुआ। अच्छा, बीच में आका हुसैन का नाम आया और अब जो रातें आ रही, कासिम, अब्बास, अकबर, यही नाम हमारी जबान पे आएंगे। जब अब्बास का आलम नजर आएगा तो हम अब्बास का नाम लेके अपनी हाजत अब्बास की बारगाह में पेश करेंगे। जनाब कासिम की छवि आएगी, हम जनाब कासिम का नाम लेके अपनी हाजत उनकी बारगाह में पेश करेंगे। ये खाली नाम, यूनुस नक्काश का वाकया है तो बहुत मशहूर, लेकिन बाज औकात ये वाकया लोग भूल जाते हैं, जिसके नतीजे में दुआए तवस्सुल पर भी कुछ लोगों को एतराज है। ये तो आपको मालूम है कि हमारी कौम में ऐसे यंगस्टर पैदा हो चुके हैं जो ज़ियारत आशूरा को ऑथेंटिक नहीं मानते, जो ज़ियारत अरबईन की अहमियत को नहीं मानते, जो दुआए तवस्सुल को शिर्क कहते हैं अमंग आवर सेल्फ। यूनुस नक्काश का वाकया, क्योंकि अब ये जो छवि निकल रही है आज से, उसके हवाले से ये बात मैं कह रहा हूं। यूनुस नक्काश है, नक्काश का मतलब यह है कि शायद इसको अंग्रेजी में इनग्रेविंग कहते हैं, यानी मसलन किसी की अंगूठी है, घड़ी है, अकीक है, उसके ऊपर अपना नाम लिखना, कुरान की आयत लिखना, गालिबन इसको इंग्रेविंग कहा जाता है अंग्रेजी में। मेरी अंग्रेजी गलत हो तो माफ कीजिए, सही हो तो समझ के बात को आगे बढ़ाओ। तो वो नक्काश है, नक्शो निगार बनाता है अंगूठियों पर, और इस्लाम में वैसे ही अंगूठी और ये रिंग, इसकी बड़ी अहमियत। और खाली नहीं बल्कि ये रिवायत भी है कि अकीक पे ये लिखवाओ, दुर्रे नजफ पे ये लिखवाओ, हदीदे सीनी पे ये लिखवाओ। और अब आप कर्बला जा रहे हैं और मशहद जा रहे हैं और वहां तो ऑलरेडी तैयार आपको ये प्रीशियस स्टोन्स वाली अंगूठी मिलती है। तो यूनुस का काम ही यही। और ये सामर्रा में रहने वाला, और जमाना है हमारे 10th इमाम का जमाना, तो उनके घर के बराबर रहता। 10th इमाम का घर कहाँ है? जहां पे आज 10th इमाम की कब्र है, वही रोजा सामर्रा में, जो अब्बासी खलीफा था। कितने ये लोग जालिम होते। एक मुतवक्किल का तो नाम हमने सुन लिया है, लेकिन सारे के सारे जुल्म एक जैसे। उसके पास कोई बहुत ही कीमती अकीक आया, अकीक उसके बेनिफिट और अकीक का रिकमेंडेशन और इमाम की दो हदीसें। जिस हाथ में अकीक हो वह हाथ में कभी फाका नहीं होने पाएगा। जिस हाथ में अकीक हो और वो हाथ उठा के दुआ की जाए, वो हाथ कभी खाली वापस नहीं आएगा। एक पूरा सिलसिला है अकीक की अंगूठी के फजाइल का। मगर आज ऑलरेडी बात इतनी फैल गई कि मुझे लग रहा कि अब तो मसाइब का वक्त करीब आ रहा है, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी बात करूं। बड़ा कीमती अकीक खलीफा वक्त के पास आया। एक्चुअली खलीफा नहीं बल्कि जो सामर्रा का गवर्नर था, उसने यूनुस को बुलाया इसलिए कि पूरे शहर में इस जैसा एक्सपर्ट आदमी कोई नहीं, और कहा कि ये अकीक ले जाओ और इसे अपने घर में रखना, मैं इसी बीच में तुम्हें बताऊंगा कि इस पर मुझे कौन सी आयत कुरान की लिखवाना है। बहुत एहतियात करना, ये बड़ा कीमती है और बहुत बड़ा। ये अकीक जितना बड़ा होगा उतनी उसकी कीमत ज्यादा। खैर बहुत लंबी बात हो जाएगी कि जीनियन हकीक के ये फजाइल बयान हो रहे हैं। अब ये घर में लेके आया, ये वाकया, ये यानी खुद इमाम की लाइफ हिस्ट्री में ये वाकया आपको मिलेगा। 10th इमाम के घर में लाया, उसके बच्चे ने इतना बड़ा हकीक देखा। बच्चा अपने घर में रोजा ना अकीक फिरोजे हदीद हदीद चीनी दुर्रे नजफ ये सब देखता, मगर इतना बड़ा हकीक। बच्चे ने बाप से कहा मैं इसको हाथ में लेके देखना चाहता हूं। हाथ में लिया, जमीन पे गिरा, दो टुकड़े हो गए, कत्ल। पूरा घर पुराने जमाने के बादशाह खाली, इसको सजा नहीं मिलेगी, इसका सारा घर मार दिया जाएगा। घबरा गया, परेशान हो गए। बराबर में 10th इमाम का घर है, उसी वक्त दौड़ा दौड़ा गया, मौला ये प्रॉब्लम मेरे साथ पेश आ गया है, मेरी जान। ये जालिम जो आइम्मा मासूमीन को शहीद कर रहे हैं, एक आम इंसान की क्या हैसियत है इनके निगाह। इमाम ने कहा घबराओ नहीं, जब वो गवर्नर तुम्हें बुलाए तो घर के सहन में खड़े होके हमारा नाम लेना और उसके पास चले जाना, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कोई दुआ नहीं, कोई कुरान की आयत नहीं, कोई वजीफा, कोई अमल नहीं, कहा खाली हमारा नाम, सिर्फ नाम। अब इमाम ने कहा, वो अपने घर में आ गए, लेकिन सोचने लगा तो इस दुनिया में अगर अल्लाह ने हिदायत के लिए इमाम को रखा तो गुमराह करने के लिए शैतान भी जो है ना, जो दिमाग में ऐसे ऐसे नॉनसेंस ख्यालात लाता है, शैतान ने इससे कहा। ये क्या जवाब दिया इमाम? भैया अकीक टूट गया, दो टुकड़े हो गए। इमाम का नाम कोई गुलू कोई थोड़ी है कि इधर मैं इमाम का नाम लू और वो अकीक दोबारा जुड़ जाएगा। कोई और सोल्यूशन इमाम बताते, लेकिन नहीं, मोमिन था, ट्रस्ट था इमाम पर। एक मरतबा कहा, जब आका ने कह दिया कह दिया। दो दिन गुजरे, गवर्नर की जानिब से कॉल आई कि अकीक के टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे पास आ जाओ। डर गया, घबरा गया, घर वालों को आखिरी वसीयत करके गया, मगर इमाम के हुक्म की वजह से दरवाजे पे खड़े होकर उसने इमाम का नाम लिया। ये तीन दुआएं ऐसी हैं जो मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप इसे रोजी की नीयत से पढ़ेंगे तो दरवाजे पे खड़े होकर पढ़िएगा। जब आप अपनी रोजी के लिए जा रहे हैं, एक जियारत वारिसा, भाई जियारत वारिसा माका को सलाम करने के लिए भी पढ़ते हैं, वो घर में पढ़िए, मुसल्ले पर पढ़िए जान। लेकिन अगर रोजी के लिए पढ़ रहे हैं तो दरवाजे पे। نمبر دو تسبیح زہرا، ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ روزی کے لیے پڑھ رہے ہیں تو وہ تسبیح زہرا نہیں، دروازے پہ کھڑے ہوگے. اور نمبر تین جو میں نے پہلی مجلس پہ کہا تھا، السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین، روزی کے لیے دروازے پر یا گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے. خیر، تو امام نے کہا تھا کہ جب بلایا جائے تو دروازے پہ کھڑے ہو کے ہمارا نام لینا پھر جانا. یہ نام لے کے گیا خدمت امام میں. یہ واقعہ کہلاتا ہے یونس نقاش کا واقعہ. یونس نام ہے، نقاش اس کا پروفیشن ہے کہ وہ نقش و نگار انگریونگ کرتا. خیر، نام لے کے گیا، گورنر کے محل میں گیا اور اس کو پتا ہے کہ مجھے عقیق مانگا جائے گا اور وہ کہے گا کہ اس عقیق پر قرآن کی آیت لکھنا اور میں مارا جاؤں گا. لیکن گیا تو بڑا عجیب مسئلہ دیکھا. اب آج شب سات محرم، وہ جوک کرنے یا پڑھنے کا نہ ٹائم ہے نہ دل جا رہا. پھر بھی ایک شعر میں پڑھوں گا، شاید آدھے لوگ نہ بھی سمجھیں اور میں یہی چاہتا ہوں کہ آدھے لوگ نہیں سمجھے. لیکن پہلے واقعہ، گورنر گیا بڑا ظالم، ذرا ذرا سی بات پہ لوگوں کو قتل کرتا. اس سے کہنے لگا کہ یونس نقاش، تم نے ابھی اس عقیق کو ہاتھ تو نہیں لگایا؟ کہا نہیں، وہ رکھا ہوا، میں آپ کے آرڈر کا انتظار کر رہا ہوں. کہا کہ تمہیں تو پتا ہے کہ میری دو بیویاں، ایک بیوی کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا. اردو کے ایک شاعر تھے اکبر الہ آبادی، ان کا مشہور شعر، اکبر ڈرے نہیں کسی سلطان کی فوج سے مگر شہید ہو گئے بیوی کی نوج سے. اب یہ نوج کسے کہتے ہیں یہ آپ لوگ نہیں سمجھیں گے، کسی اردو بولنے والے یا لکھنؤ والے سے پوچھئے کہ عورتیں جو نوج کہتی ہیں نا وہ کیا چیز ہے. اکبر ڈرے نہیں انگریز کی فوج سے مگر شہید ہو گئے بیوی کی نوج سے. ایک بیوی کو سنبھالنا مشکل. کہا کہ میرے